भूल है अपना, दिया सुख हमें है कितना। बनाया प्रभु ने अपना, दिया सुख हमें है कितना। न इतने तारे अंबर में, न इतने तारे अंबर में, न सागर में जले इतना। बनाया प्रभु ने अपना, दिया सुख हमें है कितना।
आवाज सुन के आएंगे ना माता है? आवाज सुन के आएंगे। ये हो गया चालू खेल। चलो ओम शांति। आज एक ही टॉपिक पे चर्चा करने का इरादा है। आज बाबा ने कहा नमन योग्य क्या है, पता है माताओं को? खैरो अब चुप रहना भाई, माता ही बताएंगी। नमन योग्य, मैंने सब चेंज कर दिया थोड़ा। पवित्रता, जब हमारी पवित्रता बहुत अच्छी है तो हमारा ग्रेड ऊंचा है। पवित्रता डाउन हुई, ग्रेड डाउन हो गया। पवित्र आत्माएं ही पूजनीय हैं। हम सब इस पे चिंतन करेंगे और कोई भी निराश नहीं होगा। निराश हो जाते हैं ऐसी क्लास सुन के, हमारी तो है नहीं, हमारा क्या होगा। ये नहीं, क्लासेज इसलिए होती हैं कि हम और आगे बढ़े, क्लियर हो हमारे मन में। पहली चीज, हमारी प्योरिटी का महत्व क्या है, क्यों ये नमस्ते करने योग्य है, क्या होता है इससे, बोलो। सब चिंतन करेंगे। आप तो ऐसे चुप हो गए जैसे बहुत गंभीर बात पूछ ली गई हो। इससे पहले नहीं, पर राजाई के लिए और कुछ चाहिए। पहली बात बताई, भगवान को पवित्र आत्माएं बहुत आकर्षित करती हैं, भगवान उन पर खुश हो जाता है। सच्ची बात है ये? कोई कितना भी धनवान हो, वो अपना बहुत धन यज्ञ में दे दे, बाबा उसे अपने साथ भोजन भी खिला ले, पिकनिक करे, स्टेज पर भी बैठा दे, एक सेव भी दे दे, लोग इससे परेशान होते हैं ना, इनको दे दिया, हम गरीब हैं, हमें तो पूछा नहीं बाबा ने। तो असलियत में बाबा के मन में स्थान है पवित्र आत्माओं का, वो उसके दिल तख्त पे निवास करती हैं। पीछे बाबा की मुरली में था ना, हर बाप अपने बच्चों को ज्यादा प्यार करता है ना, दूसरों को भले करे भी। हमारा बाप भी उन्हीं ज्यादा प्यार करता है जो बहुत पवित्र हैं। सच तो ये है, दुनिया में भी जानते हैं, भगवान को धन से खरीदा नहीं जा सकता, ये है ही नहीं, उसका कोई नाता नहीं धन पैसे से। जो भारत को स्वर्ग बना कर जाता है, जो इस धरा को हीरे रत्नों से भरपूर करके जाता है, उसके सामने कागज के नोट क्या है, जलने वाले लगते हैं ना उसे। बाबा कहा करते थे, हंसी की एक बात सुना दो, जो पुराने हैं बुजुर्ग हैं उन्हें पता होगा, पहले एक पैसे का सिक्का होता था, तांबे का, तांबे का बीच में कटा हुआ, थोड़ा बड़ा डेढ़ इंच और बीच में आधा इंच का कटा हुआ सुराख। तो कई बहने ना बड़ी मजाकिया थी, बाबा से बड़ी मजाक किया करती थी कि चलो बाबा को आज छेड़ते हैं जरा, सिक्का ले गए कि बाबा ये क्या है देखो। अब बाबा देखे, पढ़ा तो नहीं कि एक पैसा भी लिखा है, क्या है ये? कहा वो वाशर होगा जो नल में फिट किया जाता है, छेद होता है ना उसी में। कहाँ से ले आये वाशर? बाबा को बताया कि नहीं बाबा, ये एक पैसे का सिक्का है। पर बाबा ने क्या कहा होगा? देखो बाबा ने भारत को कैसा साहूकार बनाया था। हर गरीब हुआ तो ऐसा कि एक पैसे का तांबे का सिक्का बनाया, उसको बीच से काट दिया। अब तो वो भी नहीं है, अब तो पूरा ही नीचे आ गए। तो बाबा को पवित्रता बहुत प्रिय है। बताओ, टीचर बहन को देख के एक बात मुझे याद आ गई। इसके महत्व को आज स्पष्ट करते हैं तो महत्व को जानने से बहुत चीजें केयरफुल हो जाता है ना मनुष्य। जहाँ सेवाओं में, निमित्त आत्माओं में जितनी ज्यादा प्योरिटी है उतनी उनकी सेवाओं का विस्तार है। क्यों? क्योंकि उनकी पवित्रता से देवकुल की पवित्र आत्माएं आकर्षित होकर आती हैं। तो एक और सेवाओं में कोई बहुत मेहनत करे, धन पैसा खर्च करे, बहुत प्रोग्राम करे, दूसरी ओर किसी की प्योरिटी बहुत सुंदर हो। बाबा के बहुत अच्छे महावाक्य हैं, मैं आपको सुनाता हूँ, आपको याद आ जाएंगे। प्योरिटी ही पब्लिसिटी का सबसे सुंदर तरीका है, क्योंकि प्योरिटी से देवकुल की आत्माएं खिंच खिंच कर आती रहेंगी। ठीक है, आगे चलो। प्योरिटी धर्म के लिए सबसे बड़ा बल है। हम यहाँ पवित्र बन रहे हैं और सारे संसार की आत्माओं को भी बल मिल रहा है, क्योंकि प्योर आत्माएं ही सबसे अधिक पुण्यवान आत्माएं हैं। जिसके पास जितनी प्योरिटी है वो उतना ही पुण्य आत्मा है। अब सुनाओ, आगे चिंतन चलाओगे आपका। प्योरिटी है, हाँ, प्योरिटी रॉयल्टी भी है, पर्सनलिटी भी है। जो जितना पवित्र है वो उतना ही सहज योगयुक्त हो सकते हैं। पवित्रता का आधार ही जैसे त्याग है वैसे ही प्योरिटी है। एक छोटा सी अनुभव की बात सुना दो अभी की। किसी एक युवक ने मुझे फोन किया शाम को, अभी कहा मेरा योग नहीं लगता, बहुत सारी बातें सुनाते हैं। मैंने कहा नहीं, बस आगे नहीं, जो मैं पूछू उसका उत्तर देना। जन्मे कितने समय से? एक साल से। फिर और कुछ सुना नहीं लगा। मैंने कहा नहीं, जो मैं पूछू वही बताना है। मैंने कहा ये बताओ, ज्ञान में आने से पहले तुम्हारा जीवन कैसा रहा? कहा बड़ा खराब। मैंने कहा यही कारण है तुम्हारा योग नहीं लगता। कहा योग में बैठता हूँ फिर भारी होने लगता है। सब युवकों को जानना चाहिए, योग प्योरिटी की शक्ति ही हमारे ब्रेन को पावरफुल करती है, और पावरफुल ब्रेन ही एकाग्र चित्त हो सकता है। जिसका ब्रेन कमजोर हो गया उसका मन स्थिर नहीं हो सकता, उसे फिर दर्द होगा, भारीपन हो जाएगा, योग लगेगा नहीं, 5-7 मिनट लगेगा। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने क्या कह दिया, सुनो आजकल के मनोविज्ञान की बात। मनोविज्ञान अधूरा है ना, पूरा नहीं है, ये अधूरा है, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं सबके मन अलग अलग हैं, सबके मन की गति अलग अलग है, सबके मन के विचार अलग अलग हैं। तो उन्होंने क्या कह दिया, कोई भी मनुष्य 10 मिनट से ज्यादा एकाग्र हो ही नहीं सकता, ब्रेन की शक्ति केवल 10 मिनट तक ही है। ये उनका कहना इसलिए तो ठीक है कि कलयुग के मनुष्य इससे ज्यादा एकाग्र नहीं होंगे। पढ़ भी रहे ना, 10 मिनट एकाग्रता से पढ़ेंगे फिर एकाग्रता टूटेगी, लेकिन ये गलत है। जो राजयोगी हैं और जो पवित्रता को अपनाते हैं उनकी एकाग्रता घंटों, सारा समय ही हो सकती है। हम ऐसी भी स्थिति बना सकते हैं कि हमारी मन बुद्धि की एकाग्रता पूरा जीवन रहे, उसकी भटकन बंद हो जाए, तो योग के लिए भी आधार है प्योरिटी। लेकिन जिसका जीवन ऐसा बीत गया है वो क्या करे, वो तो बीत गया ना, अब रिटर्न तो नहीं हो सकता, क्या करेंगे वो। और अच्छा पुरुषार्थ पहले करें। मैंने उसे कहा 2 घंटा रोज जाके यज्ञ की सेवा किया करो, सेंटर में सारी सफाई का काम तुम ले लो। क्या होगा इससे, ये जो पुण्य बनेगा उससे वो पाप का खाता माइनस होने लगेगा, क्योंकि तो सबसे बड़ा पाप कौन सा है, सबसे बड़ा पाप काम महाशत्रु, सबसे बड़ा पाप है काम महाशत्रु। क्यों, पाप किसे कहते हैं, मोटी बात नहीं, सूक्ष्म बात बतानी, बोलो भाई लोग उत्तर देने। पाप वो कर्म है जिससे मन बुद्धि की शक्तियां तेजी से नष्ट होती हों। इसे जो लोग काम वासना में रत हैं उनके ही पाप ज्यादा हो रहे हैं, उन्हें पता नहीं, क्योंकि उनकी मन और बुद्धि कमजोर होती जा रही है। और मन बुद्धि कमजोर होने से क्या हो रहा है, ब्रेन कमजोर, देह कमजोर, बीमारियां बढ़ रही हैं, दवाइयां काम नहीं कर रही हैं, उल्टा बहुत सारा खान पान गंदा, चारों ओर का वातावरण गंदा। लेकिन मूल चीज है अपवित्रता। संसार में रोग बढ़ने का पहला कारण अपवित्रता, और कारण तो बहुत है अपवित्रता। जब हम छोटे थे, जब हमें ब्रह्मचर्य की प्रेरणाएं मिल रही थी भिन्न भिन्न जगह से, मेरी बात है, तो बहुत सुंदर बात लिखी हुई मिली कि एक स्कूल में वेदों का ये महावाक्य लिखा था, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है वो 100 वर्ष तक निरोग जीता है। तो लोग बताया करते थे जो बच्चे होते आते ना, कि ब्रह्मचर्य पालन करने से शरीर में रोग नहीं होते। ये अलग चीज है कि आजकल रोगों के कारण बहुत हो गए हैं, खान पान भी है, पानी भी है, हवा भी है, तो जो सब्जियां हम खा रहे, फल खा रहे, उनमें भी कुछ नहीं है। किसने मुझे भी कहा तरबूज बड़े मीठे थे, बनारस में मैं था, बड़े मीठे तरबूज हैं आपके, तो डॉक्टर ने बताया तरबूज न खाना। मैंने कहा लो मुश्किल से तो मीठे मिले थे, ये भी तुमने बंद करा दिए। कहा ये केमिकल डाल के मीठे किए जाते हैं, इनसे लीवर में गड़बड़ होती है। तो आजकल लीवर बहुत वीक होते जा रहे हैं, उसका एक कारण भोजन, ऐसा भोजन फल। अब तरबूज भी न खाओ, तरबूज फीका तो कोई खाएगा नहीं, फिर उस दिन से हमने वहाँ खाए ही नहीं, खरबूजे बहुत मीठे थे वही खा लेते थे। का ये भी सब बनावटी मीठे हैं, ओरिजिनली मीठे बहुत कम मिलते हैं जो दूसरी तरह की खेती से लोग उगाते हैं। तो और आगे चलो, प्योरिटी से 2 सुंदर बात मुझे याद आ गई। जो जितने वाइसलेस होंगे, वाइसलेस माना निर्विकारी, इसमें शब्द है निर्विकारी, पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा पवित्रता, उसमें संपूर्ण पवित्रता और निर्विकारी। निर्विकारी माना कोई व्यर्थ संकल्प भी नहीं, किसी के लिए बुरी भावना भी नहीं, ईर्ष्या द्वेष भी नहीं, ये सब नहीं। तो जो वाइसलेस होंगे उनका बाबा से कनेक्शन कैसा होगा, सुशील, वायरलेस जैसा। अब तो हरेक के हाथ में वायरलेस है, कौन से मोबाइल वायरलेस ही तो है ना, बिना तार के ही है ना। लेकिन सबसे पहले मिलिट्री पुलिस आदि के पास वायरलेस ही रहते, अभी भी रहते हैं, ताकि उनकी आवाज और कोई ना पकड़ सके, तार नहीं होता, यहाँ से वहाँ बात करेंगे। तो बाबा ने कहा विनाश काल में जो जितने वाइसलेस होंगे उनका बाबा से कनेक्शन वायरलेस सेट की तरह होगा, अर्थात वो बाबा से बात कर सकेंगे सीधी, उसमें उनको कोई बीच में रुकावट नहीं होगी। उन्हें ये भी नहीं होगा हम तो बात करते हैं, बाबा तो नहीं करता। बहुत कहते हैं ना, हम तो सुनाते रहते हैं अपनी, बाबा तो सुनाता नहीं कुछ। ये वॉइसलेस आत्माओं के साथ नहीं होगा। और आगे चलें, एक बहुत बड़ा काम अभी होने जा रहा है। मुझे आज एक डॉक्टर मिल रहे थे, मैंने उन्हें भी कहा अब आप सब डॉक्टर्स को एक चीज के लिए अपने को तैयार करना है, क्योंकि अगले 5 साल में मुझे ऐसा लग रहा है इतने पेशेंट आएंगे कि हॉस्पिटल में जगह नहीं होगी, उन्हें कहाँ भर्ती करें, लेकिन भीड़ हो जाएंगी बहुत ज्यादा, और वो भी होंगे साइकेट्रिक पेशेंट, ब्रेन के, मन के, जिसका इलाज ही नहीं कोई होता, दवाई देते रहते हैं इलाज नहीं, थोड़ा और इधर को जाओ भाई, थोड़े से खिसक जाओ, हाँ इधर भी आ जाओ, इधर आ जाओ, युवक सब इधर आ जाओ, छोटे इधर आओ सब, छोटे छोटों को देख के मुझे याद आ गया, कन्याओं के लिए खुशी की बात सुना दूं, बाबा जो साकार में थे ना, बाबा यहाँ बैठते थे, बहने इधर, भाई इधर, और आगे यहाँ सब कन्या, ये जगह यहाँ नहीं होती थी, ये रिकॉर्डिंग का इधर होता था और यहाँ सब कन्या बैठती थी। और मैं सोचता हूँ कभी कभी कि ब्रह्मा जी क्या है, ब्रह्मा जी नेक्स्ट टू गॉड है ना, भाग्य विधाता, उसकी बजाय तो भाग्य बदल दे सबका। और जब बाबा थे तो बाबा के पास माइक भी नहीं था, ये नहीं था, माइक की कहानी में सुनाया करता हूँ, यहाँ वाले तो जानते हैं, वो बड़ा सा होता था हाथ जैसा, कटाव कटाव से वो पास वाली गद्दी पे रख दिया जाता था, इसलिए रिकॉर्डिंग उतनी क्लियर नहीं आई ना। फिर क्या हुआ, जब बाबा अव्यक्त हुए वहां तक तो आवाज पहुंचेगी नहीं, तो हमारी लच्छू बहन वो माइक हाथ में लेके बाबा के आगे खड़ी होती थी, बाबा कहते बच्ची थक गई होगी रख दो अभी से। फिर किसी बुद्धिमान ने देखा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो एक ये स्टैंड दिया, तो स्टैंड में कपड़े से, तब रबर बैंड भी नहीं होती थी, कपड़े से उस होल्डर से को बांध दिया, फिर भगवान ने मुरली चलाई, देखो भगवान की कहानी। फिर किसी ने देखा कि भाई ये भी ठीक नहीं, फिर पहली बार ऐसा माइक आया, आ गया होगा 72 या 71 में। तो मैं सोचा करता हूँ बाबा अपनी शक्तियों से इस सृष्टि के नियमों में डिस्टर्बेंस नहीं करता, इंटरफेयर नहीं करता, जिस गति से कोई चीज प्राप्त होनी है उसी गति से होने देता है, वो चाहे तो क्या करा दे। उत्तर नहीं दे रही माताएं, माइक नहीं भेज दे, लेकिन वो चाहे तो हीरो की बरसात करा दे। बाबा ने कहा है, बाप चाहे एक संकल्प करे इस धरा को स्वर्ग बना दे, अभी एक संकल्प करे सब कुछ विनाश हो जाए, लेकिन बाबा ऐसा नहीं करते, उत्तर दे देते हैं कर्म फल, जैसा कर्म वैसा फल, इस सिद्धांत से ये खेल चलता है ना, तो इसी सिद्धांत से चलने देता है बाबा। फिर से आ जाए प्योरिटी पर, एक बहुत बड़ी चीज मैं कह रहा था डॉक्टर्स को, मैं कह रहा था कैसी भीड़ आएगी, जगह नहीं मिलेगी, आप सबको बस दृष्टि देनी होगी 10-10 सेकंड, और लो ये गोली खाओ और जाओ ठीक हो जाओ, लो खाओ जाओ ठीक हो, धाखी देने लगना, डॉक्टर साहब ने दे दिए, जाओ ठीक हो जाए, पानी रख लेना बोतल में, लो ये आधे की थोड़ा सा पी लो ठीक हो जाओ, कैसे होगा ये। सुनो बाबा का महावाक्य, बिल्कुल बिल्कुल, मिट्टी लेके जाते थे, मुझे कह रहे थे मिट्टी चाहिए मधुबन की, मुझे तो ख्याल नहीं आया, मैंने कहा सब जगह फ्लोरिंग फर्श हो चुका है मिट्टी, फिर मुझे याद आया इन्होंने बताया कि बगीचे के में तो है ना पीछे, वहाँ से दे दिया करो, कई मकान के लिए ले जाना चाहते हैं, हमारा मकान बन रहा मधुबन की, थोड़ी सी मिट्टी तो डाले टीचर बहने, तो वहाँ मिट्टी है किसी को चाहिए, लेकिन गड्ढा न कर देना। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी, देखने में से प्रश्न पूछा था, मैं क्लास कराई थी ना कि भाई ऐसा समय आएगा मधुबन की तो मिट्टी भी लोग यहाँ लगाएंगे। किसी ने कहा मिट्टी है ही नहीं, कहाँ से लगाएंगे। देखा मिट्टी को चलाना पड़ेगा महानात्माओं को, थोड़ा उनके चरण स्पर्श से मिट्टी पवित्र हो जाएगी। ये सब होने जा रहा है, सब होने जा रहा है। मान लो यहाँ बैठ के हम सब योग करते हैं, ब्रह्मा बाबा ने यहाँ योग किया, मामा ने यहाँ योग किया, अनेक महानात्माओं ने किया, तो यहाँ की ये जो दीवारें हैं ना, इसमें भी योग की तरंगे भर गई हैं। ऐसा होगा लोगों को, हाथ लगाया दीवार को, वाइब्रेशन आ गए, कमर दर्द है टेक कर बैठ गए, कमर दर्द ठीक हो गई। जी जिसको है करना, लेकिन अभी नहीं ठहर के। तो बाबा ने कहा, एक संदेश दिया था बहुत अच्छा, ये संदेश था बाबा का, ये लिखा हुआ नहीं है कभी कहीं, लेकिन गुलजार दादी के द्वारा ही राखी पड़ी है, मैसेज था किसी हॉल में 75 में। बाबा ने कहा, तुम्हारे आगे विनाश के समय बीमार लोगों की एक साथ भीड़ आया करेगी, तुम उन पर दृष्टि डालोगे एक साथ और सब निरोग हो जाएंगे। ये जय जयकार के समय होगा ना, प्रत्यक्षता के समय, लेकिन ये होगा उनके द्वारा जो संपूर्ण निर्विकारी हो गए होंगे। तो ये बड़े बड़े काम सबको करने हैं। और एक और बड़ा काम प्योरिटी के द्वारा होता है, जो जितने पवित्र हैं उतने ही प्रकृति को पवित्र वाइब्रेशन उनसे जाते हैं, प्रकृति पावन भरपूर होती है। संपूर्ण प्योरिटी के लिए बातें और भी हैं, लेकिन आगे चले हम। संपूर्ण प्योरिटी के लिए हमें ध्यान रखना है व्यर्थ संकल्पों से मुक्त। यदि कोई व्यर्थ बातें सुन रहा है, यदि किसी के अंदर मोह बहुत है, अभी कहा मुरली सुन रहे थे, अव्यक्त मुरली में तो नहीं आई थी पॉइंट पिछले संडे। माताओं में अगर मोह बहुत है, बाबा ने कहा कन्याओं में मोह बहुत है, तो ये भी इम्प्योरिटी है, क्योंकि यहाँ इम्प्योरिटी का अर्थ हो गया वही जिससे मन की शक्तियाँ नष्ट होती हों। तो मोह में और कुछ तो नहीं होगा, लेकिन बहुत संकल्प तो उधर जाएंगे ना। माँ का बच्चे में मोह है, बच्चा बीमार हुआ तो माँ उससे ज्यादा दुखी हो जाएगी, तो शक्तियाँ नष्ट हो गई। तो माँ को जो कार्य करना चाहिए उसको अच्छे वाइब्रेशंस देने का, वो उससे जाएंगे नहीं। इसलिए मोह की दीवार हमारे वाइब्रेशंस के लिए बहुत बड़ी बाधा है, सब याद रखेंगे। तो पांचों विकारों में से कोई भी विकार हो ना, ये पवित्रता है। चाहे ईर्ष्या द्वेष का होना, चाहे दूसरे के लिए बदले की भावना का होना, नेगेटिव फीलिंग्स का होना, दूसरा आगे बढ़ रहा हमारी खुशी जा रही है, ये सब इम्प्योरिटी के लक्षण हैं। सभी इनसे बचेंगे। ईर्ष्या तो ऐसी है जो क्रोध की छोटी बहन है ना, क्रोध भी जलाता है और ईर्ष्या भी, बल्कि ईर्ष्या में और ज्यादा संकल्प चलते हैं, ये अपवित्रता में आ गई, इससे हमारी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। आपको ध्यान देना है, एक है पवित्र बनना, दूसरा है अपने अंदर पवित्रता का बल धारण करना। बल, कोई व्यक्ति बहुत पवित्र हो, ऐसी माताएं भी हमने देखी जो कह देती हाथ भी ना लगा देना मुझे पति को, बिल्कुल हट जाओ, मेरा कपड़ा भी नहीं छू लेना, लेकिन उनके पास प्योरिटी का बल नहीं होता। क्यों? तो मैं केवल माताओं की बात नहीं कर रहा, ये तो मैं एक उदाहरण दिया। क्यों? क्योंकि व्यर्थ संकल्पों में बाद में ज्यादा रहती हैं। कोई पड़ोसी ना बैठी तो 2 घंटे बीत गए, तुम्हारे घर में क्या हुआ, आज खाना क्या क्या बना था, बहू ठीक बनाती है या नहीं, बहुत सारे व्यर्थ संकल्प गए 2 घंटे में। इससे क्या हुआ? प्योरिटी का बल समाप्त हो जाता। तो प्योरिटी एक साधारण चीज बन के रह गई। उसका बल नहीं मिला, इसलिए संपूर्ण प्योरिटी को बाबा ने डिफाइन किया है, उसकी परिभाषा दी है। जो आत्माएं केवल व्यर्थ संकल्पों से मुक्त नहीं, साधारण संकल्पों से भी मुक्त होकर महान संकल्पों में रमन करती हैं, वो संपूर्ण पवित्र हैं, उनके पास ही पवित्रता का बल रहता है। तो हमें पवित्रता की धारणा के साथ पवित्रता को एक बल भी बना देना है। और पवित्रता का बल विनाश काल में क्या करेगा, बोलो क्या करेगा? प्रकृति से हमारी सुरक्षा, ये अनुभव होते रहेंगे। प्रकृति विनाश कर रही है लेकिन पवित्र आत्माओं की सुरक्षा कर रही है। प्रकृति ने ऐसा कर दिया कि पीने को भी पानी नहीं मिल रहा है और पवित्र आत्माओं को सब कुछ मिल रहा है। ऐसा समय आ जाएगा दवाइयां नहीं मिलेगी, लोग दवाइयों के बिना तड़प जाएंगे। अब उस सीन की कल्पना करो, भूकंप हो गए, जहां तहां सड़कें टूट गई, ट्रक चल नहीं रहे, माल आ नहीं रहा, न दूध आएगा, न सब्जी आएगी, न दवाइयां आएंगी, न और चीजें आएंगी। हॉस्पिटल होंगे, डॉक्टर होंगे, दवाई नहीं होंगी। सोचो अब किसी को हार्ट की बीमारी हो गई, किसी का बीपी बहुत ऊंचा उठ गया है, किसी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है कहीं, लेकिन दवाई नहीं है। उसी की कल्पना करो, ये सीन बहुत आने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा सभी के पाप कर्म नष्ट होंगे। कष्ट होगा मनुष्य को, ये कष्ट होगा मानसिक, और इसमें रियलाइजेशन होगा कि हमने ये पाप किए, उसकी हमें सजाएं मिल रही है। बिना इस रियलाइजेशन के आत्मा निष्पाप नहीं हो पाएगी। ये सीन इस सृष्टि पर बहुत आने वाला है। आपने सुना होगा मुरलियों में हर एक के सामने उसके जन्मों की फिल्म आने लगेगी, उसके कर्मों की फिल्म। तुमने ये किया, ये उसकी सजाएं। बाबा उदाहरण लिया करते, जब जजमेंट लिखता है तो उसे सब लिखना पड़ता है, ये दोष है, ये है, इसकी ये सजा है। ऐसे नहीं लिख देगा इसकी ये सजा हो गई, जाओ दो मिनट में, पूरा डिटेल लिखना पड़ता है उसको। तो बाबा भी पूरा डिटेल दिखा देगा हरेक को। डीप रियलाइजेशन होगा, पश्चाताप होगा, क्षमा मांगेंगे लोग भगवान से, तब उनके पापों का खाता हल्का होगा। तो ऐसे समय में जिनके पास प्योरिटी का बल होगा, प्रकृति उन्हें संपूर्ण मदद करेगी। बहुत तेज गर्मी हो रही हो, जहाँ दो चार भी पवित्र आत्माएं होंगी वहाँ वातावरण ठंडा हो जाएगा। ये अनुभव होंगे, तूफान हो रहे हो, बरसात हो रही हो, भयानक ऐसी ऐसी बरसात होगी, लगेगा सब कुछ नष्ट करती जाएगी, ये तो सब खत्म कर देगी, लेकिन पवित्र आत्माओं के संकल्पों से शांत हो जाएगी। इसलिए हमें प्योरिटी का बल बहुत बढ़ाना है। बढ़ाना है सबको, सब बढ़ाएं। हम जब एक बार पवित्रता के मार्ग पर चल दिए, मैं ये भी कहूँ चल ही दिए, तो बोलो कुमार, तो पीछे नहीं मुड़ेंगे और निरंतर ऊंचाई की ओर चलते चलेंगे। जो मार्ग हमने अपना लिया, अब उसमें परफेक्शन लानी है ना। ये तो नहीं ना मार्ग भी अपना लिया और गिरते पड़ते चल रहे हैं, चल तो रहे हैं, कभी इधर कभी उधर परेशान हो रहे, ये नहीं। मार्ग अपना लिया तो अपना लिया, आ गई वही परम धाम से। मार्ग अपना लिया ना तो सभी चिंतन करेंगे, हमने जो मार्ग अपनाया अब उस पर पूरी दृढ़ता से बहुत श्रेष्ठ लक्ष्य को लेकर सभी बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ना है। कईयों के लिए मार्ग कठिन होता अवश्य है, लेकिन जिसने दृढ़ता कर ली उसको क्या होगा? बाबा की मदद। बहुत सारी चीजें हमें बाबा की मदद से प्राप्त होती हैं। बाबा की ब्लेसिंग्स हमारे साथ हो जाए, उसकी मदद बहुत हो जाए, तो अनेक कठिन मंजिल भी सरल हो जाती है। कुछ माताओं को अवश्य कठिनाई होती है, जो आस्था मूल्यम वाले भी, इसमें कोई संदेह नहीं, कई माताओं को कठिनाई होती है। मुझे भी फोन आते हैं, या तो घर से निकलो या तो ये ज्ञान छोड़ो, वापिस आ जाओ जहाँ थे। माताएं क्या करें, घर से निकलना सहज काम तो नहीं है ना, बच्चे हैं। चलो कई माताएं कहती हैं बच्चों को भी छोड़ दें, लेकिन जाएं कहाँ? सेंटर पर जाएं तो हंगामा करते हैं वो लोग। तो कईयों को ये कठिनाई आती है, लेकिन इन कठिनाइयों को सरल करने का तरीका है क्या? ऐसे सभी मनुष्यों के जो संबंधित मनुष्य हैं, उनके मन को बदला जा सकता है? सीमा बहन उत्तर देंगे, आपको अनुभव होंगे ना बहुतों के बदलने के, उनके मन को बदला जा सकता है। देखो मैं छोटी सी बात लोगों को सिखाता हूँ आजकल, और उससे बहुत गुड रिजल्ट यहाँ तहाँ से सुनने को मिलते हैं। ये बात मैं सुना देता हूँ, एक दो और अच्छी बात सुना दूँ, मुझे याद आ गई। एक के घर में नींबू का पेड़ था, 5 साल से एक भी फल नहीं आ रहा था, पेड़ सूखा रहता था। उसने कहीं टीवी पे सुना पानी चार्ज करके पीना, उसने क्या किया, नींबू के पेड़ को पानी पिलाया चार्ज करके। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, और कहा हमारे घर चलो और देखो कितने नींबू उस पर आए हुए हैं, छाया हुआ जो 5 साल में नहीं आए थे ना, वो सब जैसे इकट्ठे आ गए हों पवित्र पानी से। इतनी बड़ी ताकत है प्योरिटी में। एक ने और सुनाया, पता नहीं बच्चे के नंबर 95% लाने थे, उसके भी आ गए। अभी एग्जाम हुए ना 12वीं के, 95% आने वाले थे, उसके भी आ गए 95%। और एक बहुत अच्छा अनुभव था, मुझे भूल रहा है, कोई बड़ी समस्या थी, हाँ मकान का रजिस्ट्रेशन। 20 साल से किसी ने मकान लिया हुआ था, जिसने दिया था वो उसको रजिस्टर्ड कर ही नहीं रहा था, तो परेशानी होती है ना। 21 दिन का योग किया और आते ही उसने मकान को रजिस्टर्ड करा दिया। ये दो अनुभव भी अभी मुझे बहुत अच्छे प्राप्त हुए लोगों के। तो जिनको बंधन हो प्योरिटी के लिए, वो सवेरे उठते ही 7 बार संकल्प करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बंधन मुक्त हूँ। इस संकल्प का जादू आप देखना, लेकिन करना है उठते ही, करना है खुले दिल से, जैसे हूँ, ये नहीं मन में दो विचार चल रहे हों, बंधन तो बहुत है, मैं बंधन मुक्त हूँ, चलो फिर भी कहा था तो कर लेती हूँ, ये नहीं काम चलेगा, मैं बंधन मुक्त हूँ। जितनी गुड फीलिंग होगी, कुमारों के लिए भी है, 2 फोन ऐसे कुमारों के आए शाम को, बहुत बंधन है, परिवार वाले मुरली सुनने भी नहीं जाने देते और कहते हैं जल्दी छोड़ो शादी करनी तुम्हारी, ये सब छोड़ो, कहाँ फंस गया तुम। तो कुमार भी ध्यान दें, मैं बोलो मास्टर सर्वशक्तिवान हो बंधन, ये 7 बार करके फिर संकल्प करना, ये सब आत्माएं जो बंधन डाल रहे ना उन्हें आत्मा देखना, ये सब आत्माएं मेरे संपूर्ण सहयोगी हैं। थोड़े दिन में उनके विचार बदल जाएंगे, वो सहयोगी बन जाएंगे। 21 दिन तो रेगुलरली करना ही है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हैं, माताओं के पास इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, जल्दी जल्दी उनके युगल सहयोगी बन गए। तो हमें अपनी पावर ऑफ प्योरिटी को बहुत बढ़ाना है, तो पहला काम करेंगे व्यर्थ से स्वयं को मुक्त। क्योंकि व्यर्थ हमारी शक्तियों को खाता है, जैसे जैसे हमने शक्तियां तो जमा की हो लेकिन खाए भी जा रहा हो कोई, तो व्यर्थ हमारी शक्तियों को खाता है। अब व्यर्थ से मुक्त होना अपने हाथ में या दूसरों के? अपने हाथ में ना। कभी कभी ऐसा होता है कोई लोगों को कि व्यर्थ बहुत चलता है, जैसे मैंने इस कुमार की बात सुनाई, तो इतना व्यर्थ चलता है हम रोक ही नहीं सकते उसको। तो ऐसे में किन किन चीजों की मदद से हम व्यर्थ पर विजय पाएंगे? मुरली का बल, स्वमान का बल। मुरली के बल से क्या होगा? श्रेष्ठ संकल्प मिलेंगे हमें, उनका चिंतन हमें व्यर्थ से मुक्त करेगा। चिंतन आवश्यक है, बिना चिंतन के मनुष्य के पास श्रेष्ठ विचार नहीं होते और व्यर्थ नहीं होता। जैसे कवि बाबा ने कहा था पीछे, आप सबको याद आ जाएगा, एक मास पहले की बात है, तुम सब पूर्वज हो और पूर्वजों को क्या करना है, तुम्हारा परिवार ही बहुत बड़ा है, सारा संसार, तुम्हें सारे संसार की पालना करनी है, उनको दुखों से मुक्त करना है। तो जैसे किसी को बड़ा परिवार हो तो बचत का बहुत ध्यान रखना पड़ता है ना, भाई परिवार बड़ा है, अब सारे परिवार में 10-12 बच्चे ही हैं, एक के नहीं कईयों के होंगे, अब उनको पढ़ाना है, कई काम करना है, तो और जगह से वेस्ट ना हो कहीं पैसा, जहाँ से बचाया जा सके बचाओ, ये ध्यान देना है। ऐसे ही तुम सब पूर्वज हो, तुम्हें भी अपना स्टॉक फुल करना है। तो ये बहुत अच्छी फीलिंग है ना, मैं पूर्वज हूँ, मेरी जिम्मेदारी सारे संसार के लिए है। तो ये संकल्प व्यक्ति से वैराग्य दिला देगा, कि जिनको इतना बड़ा काम करना हो वो छोटी बातों में नहीं रह सकते। हम बहुत बड़े और बातें बहुत छोटी, ये फीलिंग होने लगेगी कि जिन बातों में तुम उलझे हुए हो वो तो बहुत छोटी हैं, तुम बहुत बड़े हो, तुम्हें बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। ऐसे सुंदर संकल्प जो स्वमान से प्राप्त होंगे, जो मुरलियों से प्राप्त होंगे, इनका बल हमें बढ़ाते चलना है। और बोलो प्रगति के लिए इम्पोर्टेंट बात, सबसे अधिक इम्पोर्टेंट, नहीं योग बल बढ़ाना, बिना योग के कोई भी पवित्रता का सुख नहीं ले सकते। मैं ऐसे ऐसे लोगों को भी देखता हूँ, 25 साल चल रहे हैं, मेरे पास तो आते हैं ना, भाई प्योरिटी में अभी संतोष नहीं है। कारण यही है, ज्ञान में तो चल रहे हैं लेकिन योग बल नहीं बढ़ाया है। जैसे आए थे वैसे के वैसे ही हैं, बाकी व्यर्थ के कारण और पीछे चले गए। इसलिए जिनको पवित्रता का सुख लेना हो, उनका योग कितना होना चाहिए रोज? 4 घंटे अवश्य, 8 में नहीं कह रहा, 8 तो थोड़े और बड़ी चीज है, जिसमें प्योरिटी एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती है हमारी, जिसमें हमारे एक एक संकल्प में पावर आ जाती है, जिससे हमारे वाइब्रेशन संसार को बहुत कुछ देने लगते हैं। लेकिन 4 घंटे योग से हम इन मनोविकारों पर सहज विजय पाएंगे। नहीं तो किसी को काम वासना सताएगी, किसी को क्रोध सताएगा, कोई अहंकार के वश हो जाएगा। बहुत लोगों को देखा जा सकता है ज्ञान में भी, जैसे जैसे आगे बढ़े, नाम हुआ, सेवाएं बढ़ी, महिमा बढ़ी, तो क्या बढ़ा? अहम भी बढ़ा। कोई मुझे चर्चा कर रहे थे आज ही, इस व्यक्ति का तो अहम अभी आसमान पे चढ़ गया है, तो ज्ञान भी छूटा, योग भी छूटा, सेवाओं की मान ध्यान, और उससे आ गया अभिमान। क्या होगा? ये गिरा देगा आत्मा को, आत्मा की आंतरिक खुशी, उसका सुख, एक आंतरिक बहुत सूक्ष्म चीज है ना, जिसको अतिंद्रिय सुख कहते हैं, उससे आत्मा वंचित हो जाती है। तो हमें अहम पर भी विजय पानी है, लोभ पर भी। जिसके पास प्योरिटी बहुत अच्छी होगी, उसका मन सांसारिक इच्छाओं के पीछे भागेगा नहीं। अगर सांसारिक सुख सुविधाएं ये हो, आप जानते हैं ना क्या क्या है संसार में, बाजार में जाओ तो 1000 चीजें मिल जाएंगी, उनकी ओर आकर्षण हो रहा है, वो नहीं होगा प्योर आत्मा होगो। अभी हम बनारस में थे तो क्वेश्चन आंसर का एक सेशन रखते थे, एक माता ने साफ लिखा मेरा सबसे ज्यादा आकर्षण पैसे में है। कैसे बच्चों इससे, मुझे पैसा चाहिए। क्यों चाहिए ये पता नहीं, पर आकर्षण है बहुत, पैसा चाहिए। तो इस आकर्षण से आत्मा योगयुक्त नहीं रह पाएगी। संकल्प उसके जितनी भी आसक्तियां मनुष्य को होंगी, उसके संकल्प उधर उधर जाएंगे, मन एकाग्र नहीं होगा। तो फाइनली हम ये निर्णय ले लें, जिसके पास संपूर्ण प्योरिटी होगी उसके पास होगी संपूर्ण एकाग्रता, उसके पास होगा प्योरिटी का संपूर्ण बल, इच्छाओं से मुक्ति, जिसको बाबा बेगर कहते हैं। बेगर माना मेरा कुछ भी नहीं, संपूर्ण समर्पण, मेरा कुछ भी नहीं, ये स्थिति आ जाएगी। तो हमें संपूर्ण प्योरिटी की ओर बढ़ना है, योग बल भी बढ़ाना है, स्वमान भी, ज्ञान का बल भी, ऐसा दीदीपन और आत्मिक दृष्टि। ऐसा दीदीपन से क्या होगा, कर्म इंद्रियां शीतल होती जाएंगी। आत्मिक दृष्टि से देह की ओर आकर्षण समाप्त होगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। संसार में कुमारों के लिए, कुमारियों के लिए क्या आकर्षण है, बोर्ड लगे हुए हैं, उसमें गंदे चित्र लगे हुए हैं, नेट पे जाते हैं, एक की कहानी सुनो कुमार की एक मिनट में। बहुत पुराना कुमार, उसने कहा कि मैंने सोचा ये कुमार कुमारियां नेट पे गंदगी बहुत देखते हैं, मैं भी तो देखूं इसमें गंदगी है क्या। नेट वो जानता है खोलना, कहा मेरे से खुला ही नहीं। और जब दो घंटे व्यस्त हो गए तो बाबा की आवाज आने लगी, इससे तुम्हारी बुद्धि ब्लॉक हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको ब्लॉक कर दिया है। पटल सुना रहा था मुझे, अनुभव, बहुत पुराना कुमार, बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसपे हम गर्व करते हैं, लेकिन ये गर्व की बात है, इसे बहुत अच्छी अनुभूति हुई। कहा तो इसके बाद मुझे इतना सिर दर्द हुआ कि मैंने दोनों कान पकड़े, आज के बाद नेट की ओर नहीं देखूंगा। मैंने कहा बस इतने में ही काम पूरा हो गया, धन्यवाद दो बाबा को। बिल्कुल सच्चा अनुभव है उसका, है बेचारा ओपनली बता रहा था मुझे कि देखो मैंने नेट को खोलने की सोची तो दुर्गति हो गई मेरी, और जो रोज खोलते हैं, वो वही कह रहा था जो रोज खोलते हैं उनका तो न ज्ञान रहेगा न योग, संसार की योग खिसाव रहेगा। और इससे क्या होगा, मैं युवकों को बहुत कह रहा हूँ, समझ जाओ, नहीं तो अगले 5 साल युवकों की दुर्गति के हैं, सब डिप्रेशन में आ जाएंगे। आ रहे हैं बहुत युवक डिप्रेशन में, इसलिए उनका कैरियर नष्ट होता जा रहा है। माँ बाप भी बहुत चिंतित होते हैं कि हमारा बच्चा इतना होशियार था, अब पता नहीं इसको क्या हो गया, पढ़ता ही नहीं, टीवी भी नहीं देखता। मैंने कहा फिर क्या करता है, लेटा रहता है। कहो पढ़ लो, मम्मी पढ़ लूंगा ना, मुझे पढ़ना है, तुम्हें पढ़ लूंगा, एकदम रुचि खत्म हो गई। ये डिप्रेशन की शुरुआत है। इसलिए सभी युवक इस महामाया से बचेंगे, माताएं बचाएंगी अपने युवकों को। जबरदस्ती नहीं आप बचा सकते, कैसे, बहुत प्यार और सद्भावनाओं से। आपके अंदर योग का बल होगा, आत्मिक दृष्टि होगी, सच्ची सद्भावना होगी, मोहवश सद्भावना नहीं, सच्ची सद्भावना, तो आपकी बात सुनेंगे। और बहुत कुमार कुमारियां ऐसे हैं जिनसे बचे हुए हैं हमारे पास हैं, सब आप भी बचे हुए होंगे, सब इनसे बच के रहना है, क्योंकि ये ऐसा समझ लो नरक का द्वार में प्रवेश करने जैसी चीज है, जो दलदल में फंसने वाली चीज है, जो युवकों के जीवन को नष्ट कर डालता है। तो सभी को संपूर्ण प्योरिटी को अपना लक्ष्य बनाना है। और लास्ट बात कहूंगा, संपूर्ण पवित्र आत्माएं संसार को उसी तरह रोशनी देंगी जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा रात को देता है। अनेक चंद्रमा जगमगाएंगे इस अंधकार में।